अभी इस धाम के बारे में बताएंगे आपको। तो जयपुर का विशेष जो महात्म्य है वो ये है कि श्री वृंदावन धाम में वज्रनाभ जो थे, जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, मतलब भगवान के हो गए ग्रेट ग्रैंडसन, प्रपोत्र कहते हैं उसको हिंदी में। वो वज्रनाभ जो थे वो राजा परीक्षित के समय थे। राजा परीक्षित कौन थे? युधिष्ठिर महाराज के भाई अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो अकेला ही बचा था, बाकी सब चले गए। पांडव मरे नहीं लेकिन भगवान के लिए चले गए, एक ही बचा था, वो राजा बन गया, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित। और उसी समय भगवान का प्रपोत्र जो था वज्रनाभ वो भी था। तो अपने चक्रवर्ती साम्राज्य में, मतलब पूरे वर्ल्ड के राजा थे परीक्षित महाराज, आज जैसे भारत के, इंग्लैंड के, ऐसे नहीं, पूरे वर्ल्ड के चक्रवर्ती सम्राट थे वो। उन्होंने ब्रज की देश के लिए, जो ब्रज है ना भगवान का जो देश है, जब भगवान ने आकर लीला किया, पहले जन्म लिया, फिर ट्रांसफर हो गए, फिर 11 साल 52 दिन रहे वहां पर, और कई सैकड़ों वनों में लीला किया उन्होंने। वो क्षेत्र को ब्रज मंडल कहते हैं, या ब्रज कहते हैं, या मथुरा मंडल कहते हैं, उसका राजा बना दिया। और भगवान ने भी जाने के पहले उनको आदेश दिया था कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा जो क्षेत्र है जहां पर मैंने लीला किया उसको संभाल के रखना, उसमें जगह जगह मूर्तियों को स्थापन करना, मेरी लीला स्थलियों को बनाए रखना, ताकि लोग आए वो दर्शन करें और लाभ प्राप्त करते रहें। तो वज्रनाभ को ये पूरा जिम्मेदारी सौंप दिया, भगवान ने भी बताया था और राजा परीक्षित ने भी भगवान के विचार के अनुसार उनको ये कार्य सौंप दिया, जैसे कि इस परगने का इंचार्ज बना दिया और विजन भी दे दिया कि आपको क्या करना है इधर। तो वज्रनाभ ने बड़ी ही मेहनत से हजारों विग्रह बनाए भगवान के और जगह जगह स्थापन किए। जैसे कि आप बरसाने में आए होंगे ना, तो बरसाने का विग्रह लाडली लाल, वो भी वज्रनाभ ने बनाया। अगर आप नंदगांव जाएंगे, नंद बाबा, कृष्ण बलराम, यशोदामाई, ये भी सारे विग्रह उन्होंने स्थापन किए थे। बलदेव जी के विग्रह हैं, मथुरा में भी है, बलदेव जी दाऊ जी में भी है, और ऊंचे गांव में भी है, और वृंदावन में भी है, सही कई जगह पर सारे विग्रह भी उन्होंने ही बनाए हैं, गोकुल में है वो सब उन्होंने बनाए, जगह जगह भगवान के विग्रह स्थापन किए। तो उसमें 7 विग्रह प्रमुख थे, एक मदन मोहन जी, एक गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ देव, उसके बाद राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद और राधा रमण, याद है? तो लिख लो, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, गोकुलानंद जी और राधा रमण देव, ये 7 प्रमुख विग्रह है। वो 7 प्रमुख विग्रह हमारे संप्रदाय के गोस्वामियों ने स्थापन किए। लेकिन जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो वो तो सभी मूर्तियों को तोड़ते हुए आ रहा था ना, तो पता था कि ये मूर्तियों को तोड़ेगा। तो जयपुर के राजा, राजा जयसिंह, बड़े वीर पराक्रमी राजपूत थे वो, और औरंगजेब इनसे डरता था राजपूतों से, क्योंकि बड़े वीर थे वो, बाकी लोगों को तो परास्त किया उसने लेकिन राजपूतों को परास्त नहीं कर सका वो। और राजपूत लोग ये जो राजस्थान के थे, जहाँ राजधानी जयपुर है, वगे भगवान के भक्त थे। आज भी राजस्थान में बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ वैष्णव कल्चर है, राजा से लेकर प्रजा तक सब लोग भगवान की भक्ति का जीवन आचरण करते हैं। तो जयसिंह वीर तो था ही क्षत्रिय, लेकिन भगवान का वैष्णव भक्त भी था। उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करना, आपके सारे विग्रह मेरे पास भेज देना, मैं सब उनकी रक्षा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनके लिए मंदिर बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा जो आप कर रहे हो। आज आपका मंदिर क्या कहते हैं खतरे में है, भगवान का विग्रह भी खतरे में है, आतंक बच सकता है, आपकी सेवा समाप्त हो सकती है, मंदिर की मूर्तियां भंग हो सकती है, तो आप हमारे पास भेज दीजिए उनको। तो ये सारे विग्रह जो है वृंदावन के, मतलब वृंदावन जिनके जिनके नाम से जाना जाता है, वृंदावन का गौरव जिनसे है, वो सारे विग्रह जो है आज जयपुर में है। उनकी एक एक करके कथा बताऊंगा आपको, कैसे कैसे वो आए और कौन कौन से विग्रह थे और कौन कौन उनके आचार्य थे, वो सब हमारी आज के ये 5 दिन की कथाओं का यात्रा का विषय है हमारा। तो संक्षेप में आपको समझना चाहिए कि वृंदावन जिन विग्रहों से बना हुआ था, वृंदावन का गौरव जिन विग्रहों में है, वो सारे विग्रह आज मूल विग्रह जो है वो वृंदावन के जयपुर में है। और जिस जगह पर ये थे विग्रह, फिर उधर नए विग्रह स्थापन किए गए, जिनको क्या कहते हैं आप लिख लीजिए, प्रतिभू मूर्ति कहते हैं। प्रतिभू, अगर मूल विग्रह कहीं चले गए हैं और वापस नहीं आ सकते हैं, तो जहां पर मूल विग्रह थे उस जगह पर वैसे ही दूसरे विग्रह स्थापन किए जाते हैं, जिनको प्रतिभू मूर्ति कहते हैं। और उस प्रतिभू मूर्ति में उतनी शक्ति और कृपा होती है जितनी पहले वाली मूर्ति में होती है। आचार्यों की कृपा से उनको स्थापन किया जाता है, विधि पूर्वक प्रतिष्ठापना की जाती है, और उसकी वजह से उन विग्रहों में वही शक्ति वही कृपा उत्पन्न होती है जो पहले विग्रहों में थी। तो आज सब जगह पर वृंदावन में प्रतिभू मूर्तियां हैं। तो वृंदावन जाते हैं कि भगवान का मूल धाम है वो, और सब कथाएं वहां पर भी करते हैं, और यहां पर भी महात्म्य भगवान ने दोबारा प्रकट किया है। वही विग्रह यहां बस गए तो वही महात्म्य सब गौरव यहां पर प्रकट हो गया, इसलिए हम लोग यहां पर भी आते हैं दर्शन करने। इतने सुंदर विग्रह हैं कि आपको देखते ही रह जाएंगे आप उनको। अगर आपके मन में भक्ति भाव है, प्रेम है भगवान से, तो केवल देखने से ही आपकी पूरी यात्रा सफल हो जाएगी, इतने सारे शक्ति उस विग्रह में। तो ये जब जयपुर का संक्षेप महात्म्य हो गया। और तीसरा आज का विषय हमारा ऐसा है कि आज तो 25 दिसंबर है, तो लोगों को क्या याद आता है, क्रिसमस। यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन है आज, है ना। यीशु ख्रिस्त भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, हमारे प्रभुपाद जी ने कई जगह पर लिखा है ग्रंथ में। और हमारे जो संस्कृति में मनु जो है, मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 14 प्रकार के मनु हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। और ब्रह्मा जी का एक जीवन काल जो होता है ना, वो 14 मनु में डिवाइड होता है इक्वल, और एक 14वें हिस्से में एक मनु राज्य करता है पूरे ब्रह्मांड पर। मतलब 14 भुवन है ना, जितने 7 स्वर्ग लोग, 1 पृथ्वी लोग और 6 पाताल नरक लोग जो है, तो 14 भुवन में वो मनु राज्य करता है। और इंडिया नागपुर और महाराष्ट्र का राज्य नहीं, 14 उसको मनवंतर कहते हैं, उस कालावधि को मनवंतर कहते हैं। तो मनु जो है उन्होंने शास्त्र में लिखा है मनुस्मृति, और मनु के नाम से हमको नाम पड़ा है मानव या मनुष्य, हम मनु के वंशज हैं इसलिए हमको मनुष्य कहा गया। और मनुष्यों के लिए उन्होंने गाइडलाइन का एक बुक लिखा है, गाइड मैनुअल, हाँ, उसको कहते हैं मनुस्मृति। तो ये मनुस्मृति के जितने भी शिक्षाएं हैं ना, वो बाइबल से मिलती जुलती है, क्योंकि भगवान ने देखा कि समय बहुत खराब चल रहा है, लोग पाप कर रहे हैं, कई प्रकार के पाप। आप बाइबल पढ़ेंगे समझ में आएगा क्या पाप करते थे, बाइबल में क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा है, इसका मतलब वो कर रहे थे, है ना। तो मैं आपको मिलूंगा, मैं कहूंगा क्या, माता जी सिगरेट मत पीना, तो मैं आप मुझे हंसेंगे, अरे हमें बताने का क्या मतलब। तो हम किसको बताएंगे, वो जो सिगरेट पीते हैं उनको बताएंगे सिगरेट मत पियो, जो मांस खाते हैं उनको बताएंगे मांस मत खाओ, जो चोरी करते हैं बताएंगे चोरी मत करो। तो ये जब ये मत करो वो मत करो ऐसे शिक्षा आती है, मतलब क्या हुआ कि जिनको ये बताया जा रहा है वो लोग ये कर रहे हैं, इसलिए उनको बताया जा रहा है कि ये मत करो। तो बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोग वो उसमें क्या क्या करते थे। तो उनको बचाने के लिए भगवान ने अपने एक अवतार को शक्ति आवेशित करके भेज दिया, और वो है यीशु ख्रिस्त। और भविष्य पुराण में उनका वर्णन आता है कि ऐसे व्यक्ति आएंगे और क्या क्या प्रचार करेंगे, उसका सारा वर्णन दिया हुआ है। सभी लोगों का ऐसे बेकार में अवतार नहीं मानते, इनका शास्त्र में कहीं ना कहीं वर्णन है, मेंशन किया गया कि आएंगे ये, और जीवन कार्य बताया जाएगा, जीवन कालावधि बताया जाएगा, क्या कार्य करेंगे वो बताया जाएगा, कब जाएंगे वो बताया जाएगा, पूरी तरह वर्णन होगा, उसी को अवतार मानते हैं। कोई उठे ऐसा कर बोलेगा मैं अवतार हूं तो वो अवतार नहीं होता है। तो इस तरह से हम यीशु ख्रिस्त को भगवान का शक्तिवेश अवतार मानते हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त का वर्णन भविष्य पुराण में आया है। तो एनीवे लोग तो अभी यीशु ख्रिस्त के नाम पे तो इतना पाप कर रहे हैं, अभी 6 दिन 5 दिन इतना पाप करेंगे क्या बताएं आपको, इतना शराब पियेंगे, इतना जानवर काटेंगे, इतना व्यभिचार करेंगे, इतना पागल होंगे, नशा करके नाचेंगे, और जितना साल भर में नहीं करते उतना यीशु ख्रिस्त के नाम पे 5 दिन में करते, और फिर नरक में अपना जगह बुकिंग कर लेते हैं परमानेंट फिक्स। जैसा हम लोग धाम में अपना बुकिंग करने का ट्राई कर रहे हैं ना, भगवान के धाम में सीट बुक करने का ट्राई कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन मिलेगा RAC भी चलेगा, लेकिन चाहिए भगवान के धाम में एक सीट तो दे दो हमको। वैसे वो लोग सब लोग अपना कार्य करके नरक में अपना बुकिंग कर रहे हैं, वो भी छोटा घर नहीं, महल, मतलब महल नहीं होता उधर, बड़ा मतलब बड़ा दंड मिलेगा, बड़ा परेशानी होगी, बड़ा कष्ट मिलेगा, ऐसा बुकिंग यहाँ से कर रहे हैं। मैंने बताया ना जो आज कर रहे हैं वो उसका परिणाम कल देखेगा, आज जो कार्य कर रहे हैं उसका कल जिंदगी आपको ठीक मिलेगी, उस तरह से वो इतना पाप करते हैं। लेकिन ऋषि कृष्ण ने क्या कहा है, कुछ बातें बताऊंगा आपको मैं, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस दुनिया में रहते हुए खुश रहना है, इस दुनिया में रहते हुए सुख चाहिए आपको, तो क्या करना चाहिए आपको, कोई कह सकता है क्या? अगर आपको इस दुनिया में रहते हुए सुख चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? गुगली क्वेश्चन है कहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए। एक तो कम से कम बोल सकते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा सुना मैंने, और डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, और क्या, सेवा करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, दूसरों को सुख देना चाहिए। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर है, किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए, देना ही है तो सुख दो, नहीं तो कुछ मत दो, लेकिन कष्ट मत जरूर दो, कष्ट जरूर मत दो। तो यीशु ख्रिस्त ने किसी ने कहा बहुत सुंदर उत्तर दिया उसका, कि अगर इस भौतिक दुनिया में जो आप जी रहे हो, शरीर धारण करके जन्म मृत्यु वाले जीवन में जी रहे हो, इस दुनिया में जी रहे हो, तो इस दुनिया में सुख ढूंढना बंद करो। जिस दुनिया में आप सुखी होने का प्रयास कर रहे हो और सुख चाहते हो, उस दुनिया में पहले सुख ढूंढना बंद करो, क्योंकि भगवान ने कहा है माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम् अशाश्वतम्। ये दुनिया मैंने बनाई है, इसके मैनुअल में लिख रहा हूँ और दे रहा हूँ आपको, उस मैनुअल में लिखा है कि इस दुनिया में कहीं भी खुशी का इंतजाम मैंने किया नहीं है। जैसे अगर आपका फल चाहिए तो हम बोलेंगे करेले के पेड़ के पास मत जाइए, वहां पर आम नहीं मिलेगा, या अगर आपका फल चाहिए तो अमरूद के पास मत जाइए, तो फिर अमरूद के पेड़ के पास आगे से जाएंगे या पीछे से जाएंगे, या राइट से जाएंगे या लेफ्ट से जाएंगे, या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, सब जगह क्या मिलेगा, अमरूद, आम तो नहीं मिलेगा उधर, है ना। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं कि अगर खुशी चाहिए सुख चाहिए तो इस दुनिया में मत ढूंढिए, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया है सुख और ये क्या इन्वेस्ट किया इसमें, दुखालयम, ये दुख का घर है और वो भी अशाश्वत है, टेम्पररी है, आज ये दुख है तो कल वो दुख है, वही दुख परमानेंट नहीं मिलेगा आपको, और लंबा मिलेगा, लेकिन उसका भी शुरुआत होगा, उसका भी अंत होगा, थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, उसका भी शुरुआत होगा, उसका भी अंत होगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवत गीता पता है, भगवान गीता में बोलते हैं कि आद्यंतु वंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है, किसको बुद्धिमान बोल रहा है आपको, हाँ उसने PhD धारण किया है, 10 PhD किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, MD MS किया है, उसमें कॉलेज में पहला आया था, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, बड़ा बुद्धिमान होगा, नहीं, भगवान की दृष्टि से ये बुद्धि का लक्षण नहीं है। भगवान की दृष्टि से अगर बुद्धिमान बनना है और भगवान अगर उसको नोट करते कि ये बुद्धिमान है, तो उसका लक्षण क्या है, जिस चीज में शुरुआत है और जिस चीज में अंत है उस चीज में वो रुचि नहीं लेता, न तेषु उसमें रमते उसमें दिलचस्पी नहीं लेता, बुधा मतलब क्या, बुद्धिमान व्यक्ति, और आदि वंतु, आदि और अंत जिसमें है उसमें बुद्धिमान व्यक्ति रुचि लेता नहीं है, और उस दुनिया में जितना भी सुख और दुख आपको दिखाई पड़ता है वो सबकी शुरुआत होती है और सबका अंत होता है कि नहीं होता है। अरे गाड़ी नई गाड़ी लेके आए आप, क्रिसमस के टाइम पे आ गए घर पे हो, कुछ दिन बाद वही गाड़ी वही पत्थर मारेगा तो आपको दुख हो जाएगा, वही गाड़ी पंक्चर होगी तो दुख होगा, उसका टांकी फट जाएगा तो दुख होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दुख होगा। अभी नई पैंट खरीद के आए यात्रा में, नई धोती लेके आए तो देखेंगे मट्टी में नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना, कुछ पहन के बैठना, उसी धोती को 6 महीने के बाद में मट्टी में डबल के बैठ जाएंगे आप, सारा जो आकर्षण था धोती का खत्म हो जाएगा। चश्मा नया लाया तो 10 बार ऐसे करके देखेंगे उसको, फिर बाद में फिर वो टेढ़ा हो जाएगा तो फिर देखेंगे ऐसा रख देंगे। इधर हर चीज का एक शुरुआत है और अंत है, और ज्यादा करके दुनिया में सुख किसको कहते हैं, जब दुख नहीं होता तो उसको सुख कहते हैं। आज कोई दुख नहीं हुआ बोला, आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत सुखी दिन था। दुख की सुख की व्याख्या ही दुनिया की यही है, दुख का अभाव। गुरुजी महाराज बताते थे हमेशा, उनको प्रभुपाद जी बताते थे, सुख मतलब क्या, किसी को सरा सा पकड़ो और पानी में से डुबा दो उसको और 3 मिनट रखो और फिर बाहर निकालो तो जो सांस लेगा ना तो वो जो अनुभव है ना उसको सुख कहते हैं। लेकिन जब जमीन पे था तो वो हमेशा सांस लेता था तब तो सुख का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ दुख हुआ तो नॉर्मल कंडीशन को सुख का अनुभव कहते हैं कि आज कोई दुख नहीं हुआ। तो भौतिक दुनिया में दुख ही दुख भरा हुआ है सब जगह पर। तुकाराम महाराज कहते ना, सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आए बड़े, पर्वत के समान दुख जो है ना वो भोगने के बाद में वो था ना बागली जव का दाना उतना साइज का सुख मिलता है, वो भी जब वो नहीं होता तभी जो उतना अनुभव होता है उसका। तो अधिकतर दुखी होता है। और भक्ति में क्या हम ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। आनंद सुख और दुख की व्याख्या में नहीं आता है, आनंद चिरंतन होता है, वो आज मिला है तो कल भी मिलेगा परसों में मिलेगा, उसको दिव्य चीज कहते हैं। दिव्य वस्तु किसको कहते हैं, जो चिरंतन रहती है, जो समाप्त नहीं होती है, इसका आदि और अंत नहीं होता है। तो एक शिक्षा जीसस क्राइस्ट की यह है कि इस दुनिया में आनंद की सुख की खोज मत करो, इधर उसका इंतजाम नहीं किया है। और क्या दूसरी बात बताइए, बहुत सारी बातें बताइए लेकिन अभी समय कम है क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी कहानी आपको बतानी है उसके बाद में, इसलिए मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में रहना है तो इस दुनिया के बन के मत रहो, उस दुनिया के बन के रहो जिस दुनिया में जाना है आपको। इस दुनिया में रह रहे हो तो इस दुनिया में संपत्ति मत पैदा करो, क्यों नहीं पैदा करो, अच्छा है ना, अच्छे रहेंगे, घूमेंगे, फर्स्ट क्लास कपड़ा पहनेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, बंगले में रहेंगे, लेकिन जब मरेंगे तो सारा चीज यही छोड़ के जाना पड़ेगा, सारी मेहनत बेकार, फिर नहीं नया जन्म लेंगे, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, नए कपड़े, नई नौकरी, नया जवानी, नया मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहते हैं इस दुनिया में रहते समय इस दुनिया के बन के मत रहो, इस दुनिया की संपत्ति मत पैदा करो, इस दुनिया में रहते समय उस दुनिया के बन के रहो जहां आपको जाना है, और उस दुनिया में अपना खाता बनाओ, अक्षय खाता, और वहां संपत्ति जमा करो, क्योंकि वो दुनिया परमानेंट है, ये दुनिया टेम्पररी है, क्योंकि दूसरी शिक्षा है। ऐसी कई शिक्षाएं उनकी है लेकिन ये दो भी काफी है, अगर आप चिंतन करेंगे उन पर तो ये दो भी बहुत काफी है। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज कौन सी तिथि है बताइए, किसको बताएं, मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी, अपने पास ऐसा ऐप है जो आपको कोई भी दिन का तिथि बता सकता है। तो आज का तिथि है पौष मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि है आज का। इस तिथि में भगवान के पिताजी जो है ना आनंद महाराज, उनका जन्म हुआ, हरे कृष्ण। उनके पिताजी का नाम क्या था, नंद महाराज के पिताजी का नाम पूछ रहा हूँ, भगवान के पिताजी का नाम नंद महाराज था जिनका आज जन्म हुआ है, उनके पिताजी का नाम क्या था, परजन्य महाराज, नोट कर लो, ये इसके जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि शाहरुख खान की मम्मी का नाम क्या है और ऐश्वर्या का पिताजी का नाम क्या है, ये जानना जरूरी नहीं है। ये सब मरते लोग हैं, मरने वाले हैं एक दिन, इनका सौंदर्य भी मरने वाला है और वो खुद भी मरने वाले हैं। नेपोलियन का पिताजी कौन था जानने की जरूरत नहीं है आपको, हिटलर का पिताजी कौन था, नो नीड टू नो, क्योंकि इनका माता पिता परिवार का जानकारी करके आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, हो सकता है नरक में पहुंच सकते हो, उतना गारंटी है। लेकिन भगवान के परिवार के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आपको उसी परिवार में जाना है। समझो आपकी शादी हो रही है, समझो आप कुंवारी हो, शादी हो रही है, तो आपकी शादी हो रही है तो आपको सब जानना जरूरी है कि आपके हस्बैंड का माता पिता का नाम क्या है, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितनियों की शादी हो चुकी है, कितनी भाभियां हैं उधर, कितने ससुराल में कितने लोग हैं, कितना बड़ा घर है, एड्रेस क्या है उसका, फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उस जगह जाना है ना। और शादी में होता क्या है, समारोह में बताते हैं ये मेरे चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरे चाचा के चार बच्चे हैं, ये मेरे मामी है, इसका ये बच्चा है, फोटो निकालते हैं, देखो याद रखो बाकी जाके देखना है घर में जाके कौन किसके कौन कौन है ना। इसलिए समारोह करते हैं, समारोह भी करते हैं, दो परिवार मिलते हैं, अगर आपको पहचान करनी होती है बाकी जाके रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट किसको है, वो जो लड़की उस घर में जा रही है ना, उसके बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन कौन है पता होना चाहिए उसको। उसी तरह से हमको ऐसे अभी ससुराल में यहाँ पर दुख भोग रहे हैं, है ना, बहुत सासू हैं और ससुर यहाँ पर पड़े हुए हैं, जेठ और ननंद और देवर सब पड़े आपको कष्ट दे रहे हैं सब, आपको उधर जाना है मायके, हाँ ये उल्टा है, वहां पर ससुराल जाना पड़ता है, यहाँ पर मायके जाना पड़ता है। तुकाराम महाराज कहते ना, माझे माहेर पंडरी आहे भीवरी चादरी, तो हमको यहाँ पर ससुराल से मायके जाना है, लड़की मायके से ससुराल जाती है, तो हमारा मायका क्या है, भगवान का घर, तो भगवान के घर में सबका पता होना चाहिए, कितने भाई कितने बहन, वो यहाँ पर भी आके दिखाते हैं, उसका नजारा दिखाते हैं, कभी आएंगे अवतार लेंगे तो परजन्य महाराज उनके पिताजी का, परजन्य महाराज को 5 बेटे थे, देख सकते हैं आप, सबसे बड़े बेटे का नाम उपनंद, दूसरे अभिनंद, तीसरे नंद महाराज, चौथे सुनंद और पांचवे नंदन, उनको नंदन चाचा कहते हैं। तो मुझे पहले वाले की पत्नी का नाम याद है प्रभावती, क्योंकि उनका बहुत कथा में बहुत उनका सहयोग है प्रभावती देवी का। दूसरे भाई का पत्नी का नाम तुंगी है, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने पति से लंबी थी, तुंगी उनका नाम था। एनीवेज, तो ये जो नंद महाराज थे इतने सद्गुणी थे। परजन्य महाराज वैसे महावन में रहते थे, कहाँ पर, गोकुल, आज जिसको गोकुल कहते हैं, उसका शास्त्रीय नाम महावन है। तो वो महावन में ये तपस्या करते थे। इन्होंने, परजन्य महाराज ने नंदगांव में भी तपस्या किया, नंदगांव तो उनका तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, मूल रूप में ये नंदगांव जो है वो परजन्य महाराज का तपस्थली है। लेकिन वो महावन में भी रहे, जहाँ पर कृष्ण भगवान आए ना रात को मथुरा से निकल के, उसको महावन कहते हैं, गोकुल, वहां पर भी इन्होंने तपस्या किया, वहां पर भी इनका घर था, महल था, और वहीं पर इन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया है। इसमें पांचों में नंद महाराज इतने सद्गुणी थे, फिर भी नियम से तो परजन्य महाराज ने उपनंद महाराज को राजा बना दिया, युवराज को, और वो तपस्या करने चले गए। लेकिन उपनंद बाबा का गौरव देखिए, कैसे वो महान व्यक्ति थे। आजकल तो कैसे है, इसलिए कैसा है, औरंगजेब ने पिताजी को मारकर राजा हासिल किया, औरंगजेब के पिताजी ने अपने पिताजी को मारकर राज्य हासिल किया, है ना, जो अपना नहीं है उसको भी छीन कर, मर्डर करके, खून करके, वध करके हासिल कर लेते। ये दुनिया का आजकल का रिवाज है, कितने राजाओं का यही इतिहास है। कंस ने भी क्या किया था, पिताजी को अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया और खुद राजगद्दी पे बैठ गया। ये राक्षसों की संस्कृति है। लेकिन उपनंद बाबा ने क्या किया, महाराज ने नंद महाराज को राज्य सौंप दिया। कहते हैं कि हमारे पांचों भाई में सबसे सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हो, बड़ा भाई छोटे भाई को बोल रहा है, छोटा भाई छीन के नहीं ले रहा है बड़े भाई से, बड़े भाई छोटे भाई से कह रहे हैं कि हम पांचों में से आप श्रेष्ठ हो। और ये जब कह रहे हैं तो बाकी लोगों को इतराज नहीं है, नहीं नहीं उपनंद से मैं सहमत नहीं हूँ, वो तो ऐसे बकरा है, कोई मेरा मत अलग है, नहीं चारों भाई भी इस पर राजी है, मंजूर है उनको ये बात कह रहे हैं। सब लोगों ने उपनंद बाबा अपना अधिकार और सारे भाइयों ने सम्मति देकर नंद महाराज को राज सौंप दिया, और उपनंद महाराज की आज्ञा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और नंद महाराज राजा बने, जो उपनंद बाबा को बनना था। और ऐसा नहीं है कि भाई राज दिया और वो कहीं और देश चले गए, बड़ा भाई हूँ छोटा भाई राजा बने तो मैं वहां का सदर था जाकर, ऐसे नहीं, सारा जीवन साथ में ही बिताया उन्होंने। मझला भाई राजा बन के जी रहा है तो बड़ा भाई, दो बड़े भाई साथ में रह रहे, छोटे भाई भी साथ में रह रहे, और इतना आनंद और प्रेम से रह रहे, कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कोई ईगो क्लैश कुछ नहीं उसके अंदर। अब जस्ट इमेजिन करो कि हो सकता है कि आज की जिंदगी में छोटा भाई भी बड़े भाई का हिस्सा छीनना चाहता है पिताजी के हिस्से में से, जितना हो सके उतना कुछ ना कुछ लूट के, कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी करके ले ले, कुछ गलत साइन ले ले, कुछ शराब पिला के उसको कोई साइन कर ले और उसका छीन ले, ऐसे आजकल की कहानी है। तो ये सब कहानी क्यों सुननी चाहिए? जरूरी है सुनना, क्योंकि हमको आदर्श क्या है पता होना चाहिए, इसलिए भगवान की कथा सुननी जरूरी है। आप बोलेंगे क्या कनेक्शन है आज का 5000 साल की पहली कथा बजा रहे हैं, आज क्या कनेक्शन है, क्या संबंध क्या है? ऐसा लोग बोल सकते ना, आज की कहानी बताओ, कल की कहानी बताओ, परसों की बताओ, कुछ संबंध है उसका आज के इतिहास में? 5000 पहले की कथा बताकर क्या फायदा है आज, ऐसा लोग सोचते हैं। बेकार की बातें हैं, वो भी नामुमकिन असंभवनीय बातें हैं, ऐसा सकता है। अभी आपको लगेगा कि अरे भाजी तो कपोल कल्पित कहानी बता रही है, मन में एक कहानी बताकर आपको बता रहे, सत्य तो नहीं है ये, तो ऐसा हो सकता नहीं, लेकिन ये सत्य है। और इनके गुण जो है उनको सुनना चाहिए, उनका गौरव सुनना चाहिए और ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ऐसे नंद महाराज, इनका विवाह जो है, इनके मित्र थे विश्वानु महाराज, वो भी एक बड़े परिवार के, उनका भी यही इतिहास है। अरे उनके पिताजी का नाम कंजे भानु था और कंजे भानु को 9 पुत्र थे। उधर भी यही हुआ, जो पांचवा पुत्र था वृषभानु उसको बड़े भाई ने राज सौंप दिया। बड़े भाई का नाम धर्म भानु था, उसका राज्य जो है अपने वृषभानु को दे दिया, जो पांचवा नंबर का, ऊपर 4 नीचे 4 भाई थे उसके। उधर भी वही इतिहास है, इतने सर्वगुण संपन्न हो गए, सभी भाइयों को मंजूर रही है कि ये भाई सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाई है। तो वृषभानु और नंद महाराज मित्र थे, इतनी गहरी मित्रता थी उनकी, एक साथ ब्रज में रहे, एक साथ गैया चराई, एक साथ प्रजापालन किया, भगवान का भजन किया। तो वृषभानु महाराज के पास बहुत धन दौलत थी, नंद महाराज के भी कई हजारों गुना अमीर थे, वो धनी थे। तो उन्होंने अपने प्रेम से नंद महाराज को कई राज्य दे दिए, राजदंड दे दिया, राजा बना दिया, मतलब उनके परिवार को ही, प्रजन महाराज से लेकर पूरा। क्योंकि वृषभानु महाराज जो है वो श्रीजी के पिताजी है, राजा रानी के पिताजी है, सब ऐश्वर्य के जो प्रतीक है राजा रानी, उनके पिताजी वृषभानु महाराज। तो एनीवेज, तो वृषभानु महाराज ने नंद महाराज के लिए यशोदा को योग्य समझा और उनका नाम, गांव जो है उनका नाम है मेहरानो, वो आज भी बरसाने के बीच में है मेहरानो। तो मेहरानो में भी परिवार था, सुंदर परिवार, ब्रजवासी, उसमें 5 लोग थे, 3 भाई और 2 बहनें, उसमें यशोदा थी। नाम क्यों यशोदा उसका? यशोदा, जो हमेशा यश को देने वाली है, ऐसा उसका कैरेक्टर था, चरित्र था उसका। और 3 भाई और 2 एक और बहन थी। एनीवेज, तो इनका विवाह वृषभानु महाराज ने करवाया, बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हुआ। यशोदा माता मेहरानों से नंदगांव आई और वहां पर भी आगे जाकर उनको कृष्ण बलराम प्राप्ति हुई। आप सब जानते हैं कथा। तो विशेष नंद महाराज का जो चरित्र है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो आज के दिन इतना सौभाग्य है हमारा कि हमारे जो सबसे अच्छे परिचित गोस्वामी हैं नंदगांव के, हाँ, रमेश चंद्र गोस्वामी, और उनके 4 पुत्र हैं, और उनके पिताजी थे नंदन शास्त्री जी, देवकीनंदन शास्त्री जी, इतने पंडित थे वो कि आप भागवत का कोई भी श्लोक बोलो, उनको कहीं से भी बोलो, जो आपकी मर्जी है बोलो, उसके आगे सारा भागवत सुनाएंगे आपको, शुरू से बोलो, बीच में बोलो, कोई भी श्लोक किसी भी अध्याय का बोलो, उसके आगे का एंड तक, 12th स्कंद का आखिरी श्लोक तक वो कंठस्थ रूप में बोलेंगे आप, ऐसे विद्वान थे वो, इतने अच्छे भक्त थे भगवान के। तो उनके पुत्र है रमेश चंद्र गोस्वामी जी, उनके परिवार के हाथ में आज के नंदगांव की सेवा है। उन्होंने कल मुझे फोन किया था, उन्होंने प्रभु जी आइए, हमारी कल सेवा है, नंद बाबा का जन्मदिन है, आ जाओ आप। मैंने कहा प्रभु जी मैं जयपुर में आया हूँ और कई 225 भक्त लोग आने वाले हैं यहाँ पर। मैंने कहा रहो रहो, अच्छा है, गोविंद जी भी हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे लाला हैं गोविंद जी, वहां बसे हुए हैं, अच्छी तरह से लेना, नंद बाबा का आपको आशीर्वाद है, ऐसे उन्होंने बताया कल मुझे। तो जो अपने हाथों से नंद बाबा की सेवा करते हैं, उन्हीं की सेवा का आज दिन है। और हम लोग अभी जयपुर में बैठे तो उसकी याद नंद बाबा की करना बहुत जरूरी है। उनका चरित्र सुनने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो आपको एक कहानी बताऊंगा कि इनका प्रेम जो था भगवान के प्रति इतना गहरा था, इतना गहरा था। यशोदा और नंद बाबा का जो प्रेम है ना, वो वात्सल्य भाव, जिसको माँ और पिताजी का प्रेम कहते हैं ना, उसको वात्सल्य कहते हैं। वो वात्सल्य ऐसा है इनका, जैसे कुंती का भी वात्सल्य है भगवान के प्रति, लेकिन कुंती का वात्सल्य में कुंती को जानकारी है कि ये भगवान है, और वात्सल्य ऐश्वर्यपूर्ण जानकारी के साथ में वात्सल्य है। इनका वात्सल्य श्रेष्ठ है उससे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि भगवान भगवान है। हमारे घर में जो ढोल रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, चोरी कर रहा है, नृत्य कर रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, वो भगवान है ये उनका पता नहीं। एक बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया में किसी की पूजा नहीं करता, मैं किसी भी देवता को नहीं मानता, परम भगवान को भी नहीं मानता, मैं तो केवल नंद महाराज की पूजा करता, क्योंकि ये इतने महान है कि इनको रिझाने के लिए पर ब्रह्म पर तत्व जो है, परात्पर भगवान जो है, वो बालक बनकर रेंग रहे हैं उनके आंगन में। आई वर्शिप ओनली नंद महाराज, द सुप्रीम लॉर्ड हैज बिकम बेबी एंड इज क्रॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड जस्ट टू प्लीज हिम। उसको आनंद देने के लिए भगवान जो है उनको रिझाने के लिए बालक बनकर उनकी गोदी खेल रहे हैं, तुतले तुतले बोल बोल रहे हैं, हाँ माँ का दूध पी रहे, गाय बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, गोबर गोमूत्र में लोटपोट हो रहे हैं। क्यों? नंद बाबा यशोदा को खुशी देने के लिए, जिनको पूरी दुनिया पूछती है, सारे देवता उनके चरणों के रज की इच्छा करते हैं, उनके आशीर्वाद का कृपा कटाक्ष को चाहते हैं। वो भगवान जो है वो अपना भगवान का स्थिति छोड़कर इनके लिए सामान्य बालक बनकर तोतले तोतले बोल बनकर चोर बन रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं। तो ये कितने महान होंगे कि भगवान भी उनके सेवक बनकर उनको आनंद देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे हमारे संप्रदाय के अंदर एक आचार्य गए थे। तो इनका जो प्रेम है ना भगवान के, अगर वात्सल्य में अगर टॉप में कौन है, ऑलवेज गोल्ड मेडलिस्ट भगवान है यशोदा माई। आज तक पूरे इतिहास में भगवान ने कितने अवतार लिए, क्या कुछ भी किया, भगवान को डांटने का साहस किसने किया? नंद बाबा ने भी नहीं किया, भगवान को डांटते नहीं थे कभी। डांटने का काम केवल एक ही ने किया, यशोदा मैया ने। डंडा भी दिखाया है, डांटा भी है, अपशब्द भी, मतलब कठोर शब्द भी, वचन भी बोले है, उनका अधिकार है, इतना श्रेष्ठ अधिकार है। और उसके बाद में फिर ब्रज की गोपियां आती हैं, जो प्रभावती है, उपनंद बाबा की पत्नी है और बाकी भाइयों की पत्नियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, बड़ी बुजुर्ग वाली, उनका नंबर सेकंड आता है, उसके बाद नंद बाबा का नंबर आता है। और उसके बाद में फिर देवकी है, फिर कुंती देवी है, फिर बहुत सारे लोग उसके बाद में आते हैं, और नंद बाबा के भाई भी आते हैं उसके अंदर, वो लाइन में एक सिक्वेंस है उसका। इतना उनका भगवान पर प्रेम था, इतना प्रेम था कि यशोदा माई बचपन में सख्त प्रसाद था ना, से कड़क लड्डू बोला ना, कड़क बूंदी का लड्डू होता है फॉर एग्जाम्पल, उसको मुंह में डालकर चबा दी थी और मुलायम करके निकाल कर वो प्रेम से अपने बच्चे को खिला दी। तो बच्चे कहते ना, बच्चे कैसे करते, जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं, अपने मुँह से ला के मुँह में डालते हैं, उसके आसान बनाकर डालते हैं, क्योंकि बच्चे को कष्ट ना हो, दांत में दर्द ना हो, चबाने में गिर निकलने में कष्ट ना हो, आसान बना कर देते। तो रुक्मिणी का भोजन करते थे भगवान, तो बीच बीच में रोते थे कभी कभी, अभी वो मैं भी आपके घर पे आया हूँ, आप अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे हो, और सर्दी में रोने लगा बीच में, बोले प्रभु जी क्या हो गया, कुछ खाने में गड़बड़ हो गया क्या, तीखा हो गया, मीठा हो गया, आपके पसंद का नहीं बना। तो रुक्मिणी जी पूछ रही है, क्या हो गया ठाकुर जी महाराज, आप तो आपके लिए छप्पन भोग बनाया मैंने अपने हाथों से बनाया, मैं बैठ के परोस रही हूँ, क्यों हो गया? बोलते वो आपका खाना बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ स्वादिष्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन माँ के मुंह से निकला हुआ मुलायम भोजन जो माँ डालती थी मुँह में, वो स्वाद इसमें नहीं है, वो कैसे आएगा उसमें? तो मैं आप पे नाराज नहीं हूँ, मुझे कभी कभी खाते खाते उसकी याद आती है जो मैं पहले माँ के मुँह से निकाल कर खाता था। ऐसे इनका प्रेम है भगवान के प्रति। Anyway, मैं मेन कहानी पे आता हूँ, टाइम समय समाप्त होते जा रहे हैं। अब लोग सब लोग तैयार हो सुनने के लिए? एक बार हरी बोल बोल दो। थैंक यू। तो मुझे भी जरा बोलने के लिए उत्साह आता रहे। तो आप सब जानते हैं कि भगवान ने 11 साल 52 दिन वहां पर लीला किया वृंदावन में, है ना, और कंस राक्षस भेजता गया रोज का रोज। पूरी कथा भागवत में आती है, पूरी कथा नहीं आती, लेकिन रियल में रोज एक राक्षस आता था और रोज दोपहर के समय लंच के पहले भगवान उसको मारते थे और उसके मारने के बाद में यमुना जी में स्नान करके बैठकर भोजन किया करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा है, इतना समय नहीं था सुखदेव जी के पास सब बताने के लिए। तो सुखदेव जी ने भागवत में कुछ कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण राक्षसों का वर्णन किया है। तो उसके बाद में कंस हार गया बेचारा, भाई कितने लोगों को भेजू, सब लोगों को मैं रिटर्न टिकट निकाल के भेजता हूँ लेकिन एक टिकट वेस्ट होता है और वो जाते हैं वन वे टिकट लेके उधर ही गायब हो जाते हैं। अभी क्या करें, कुछ नया आइडिया करते हैं क्योंकि अपने क्षेत्र में शायद ये पावरफुल है, इसलिए वहां पर कोई जाता है तो मर जाता है। अब मैं उसको मेरे क्षेत्र में बुलाता हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं ना, इंडिया में मैच खेलना ना इंडिया के लिए आसान होता है, होम पिच है ना, कभी भी जीत सकते हैं। बाहर गए तो भाई हारने का डर रहता है, तो अपने पीछे हम लोग क्या कहते हैं, हर गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो सोचते हैं कि अभी हम लोग उसको अपने एरिया में लेके आएंगे, कुछ यहाँ पर ऐसा एक व्यवस्था बनाएंगे कि वो आएगा इधर और इधर उसको मार देंगे, सब मिलकर घेर के मार देंगे उसको। तो धनुर्धर का प्लानिंग किया उसने, बड़ा यज्ञ किया, ले अभी ना कुश्ती दंगल कुश्ती सा फाड़ सब कुश्ती गिराएंगे कुश्ती करेंगे और सब देखेंगे, उसमें पब्लिक देखेगा आनंद करेंगे, फेटे उड़ाएंगे समय से ऊपर ऊपर आनंद करेंगे। तो उसने क्या किया, अकबर को भेज दिया, अकबर को बोला कि जा तुम उसके चाचा जी हो, वो आपको वो मना नहीं करेगा क्योंकि आप उसके रिश्तेदार हो ना, मैं जाऊँगा तो मुझे कैसे देंगे, या मेरे कोई नेता जाएगा तो नेता नहीं देंगे उनको, तो आप जाओ और उनको बोलो कि दोनों बच्चों को भेजो और अच्छा लगेगा उनको मामा के घर पे यज्ञ और उत्सव देखने के लिए। तो अकबर जी गए और भगवान को लेकर गए। बड़ी दुखदायी कहानी है वो नंदगांव की, नंदगांव की दो कहानियां बड़ी दुखदायी है, एक भगवान को ले जाने का प्रसंग और एक उद्धव जी आए संदेश लेकर वो प्रसंग। दो कथाएं जो है ना उसका नाटिका वहां पर 7-7, 8-8 दिन चलती है और हर दिन 8 घंटे की नाटिका होती है, ऐसे 8 दिन नाटिका चलती है उसी प्रसंग के ऊपर और सब नंदगांव के लोग बैठकर रोते हैं, इतना रोते हैं सब दुखदायक प्रसंग है। तो वो अकरूर जी आए और ले गए उनको, सब लोगों ने रोका उनको, गोपी ने रोका, सबने रोका। भगवान ने कहा रही चिंता मत करो मैं परसों आऊंगा, शीघ्र ही आगस्य शीघ्र आऊंगा, मैं परसों के दिन आ जाऊंगा। तो उस गांव का नाम पड़ा शीघ्र और परसों, जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही आऊंगा उसका नाम शीघ्र पड़ा, और जिस दिन जगह कहा कि परसों आऊंगा उसका गांव का नाम पड़ा परसों। आज भी है गाँव, बैठे ऐसे नहीं बता रहा दिखाऊ वहां पे। तो फिर चले गए गोपियां, रस्ते में लेट गई, उनको भी समझाया, फिर पहुंच गए और वहां पर फिर जानते ना हाथी का वध किया, फिर 5 कुश्तीगरों का वध किया, फिर कंस को खींच के बाल पकड़ के मारा, फिर बहुत सारा लीला किया भगवान ने, कुब्जा को ठीक कर दिया, सर्जरी कर दिया उसका कुब्जा का, है ना, और दर्जी को मार डाला और फूल वाले को प्रेम लिया, बहुत सारा सुंदर सुंदर लीला है मथुरा लीला भगवान। फिर क्या हुआ, कंस का वध हुआ, फिर कंस का वध हुआ तो सब लोग खुश हो गए, कंस के सैनिक आ गए, वो आक्रमण किया तो उनका भी वध कर दिया दोनों भाइयों ने मिलकर, फिर सब जो आतंकवादी थे सब ढेर हो गए। अभी क्या करना है, तुरंत जेल में गए, उग्रसेन और उसकी पत्नी को रिहा किया, अपने माता पिता को भी रिहा कर दिया क्योंकि तो दोनों जेल में थे ना, जानते हैं उसको क्या चल रहा है वहां पर, उनको रिलीज कर दिया। फिर माता पिता को पास गए, वसुदेव देवकी ने क्या कहा कि बेटा आपके हम सेवा नहीं कर सके, जन्म होते ही आपको भेजना पड़ा, आपने आदेश दिया तो आपको छोड़ना पड़ा, आपका कुछ एक ही बार दूध पिलाया, बाद में कुछ सेवा नहीं किया, कुछ लालन पालन नहीं किया, संस्कार नहीं दिए, कुछ कर्तव्य पूरे नहीं किए, आपको गुरुकुल नहीं भेजा, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हम लोग बड़े दुखी हैं, हम आपके बड़े अभागी समझते हैं, यशोदा बड़ी भाग्यवान है, उन्होंने आपका लालन पालन किया, आपको बड़ा किया आपको उसके। तो भगवान क्या कहते हैं, आप बताओ आपकी क्या आज्ञा है हमारी। देखो हाँ, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवान अभी वसुदेव देवकी को पूछ रहे हैं कि हे माता पिता मेरे लिए क्या आज्ञा है। और नंद महाराज भी साथ में गए हुए हैं, ग्वाल बाल भी गए हुए हैं वो कुश्ती का अखाड़ा देखने के लिए, ऐसे नहीं कि अकेले गए। नंद बाबा अभी वेट कर रहे हैं कभी लेके जाना है इसको, तो लेकिन माता पिता से मिल रहे हैं, उनको पता यही माता पिता उनके हैं, तो थोड़ा मिलने दो उनको, होने दो प्रेम का संबंध, खड़े हैं। और कृष्ण का पूछ रहे हैं, हे माता पिता क्या आ गया हमारे लिए? तो वसुदेव देव की कहते हैं, अभी तुम यही रह जाओ, आपको गुरुकुल भेज के आपको संस्कार दे देंगे। बोले ठीक है माता पिता, आपके आगे मेरे सर आपको बोले, मैं अभी यही रहूंगा। नंद महाराज सुन रहे हैं कि अभी तो ये नहीं आएगा, वो माता पिता का वचन पूरा करना है उसको, क्या करें। वहां से जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बालक की इच्छा के खिलाफ कुछ करते नहीं हूँ, बालक को रहना है तो उसकी मर्जी, उसकी खुशी हमारी खुशी है। पहला त्याग किया उन्होंने, उनकी खुशी किसमें है कि साथ में चला जाए हमारे कृष्ण बलराम, साथ में चले और मैं नंदगांव में जाकर फिर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करें। बीच का ब्रेक था मथुरा वाला, समाप्त हो गया, अभी हम चलेंगे वापस, लेकिन अभी बालक कह रहा है कि मैया मैं आपके साथ में रहेंगे, तो कृष्ण बलराम दोनों ही रह गए वहां पर। तो बड़े हृदय में दर्द लेकर निकले वहां से, राजा है वैसे नंदगांव के, सब जगह उनका सत्कार है, तो वो जहां जहां जा रहे हैं रास्ता में सब जगह सत्कार किया जा रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री आते हैं जो, तो जगह जगह उनको रोके हार पहनाएंगे, उनका सत्कार करेंगे, जय जयकार करेंगे ना, उससे जहां जहां से जा रहे हैं सब जगह रोक रोक के, अपना कहते जगन्नाथ की कैसे रथ यात्रा होती ना, जगह जगह उनकी आरती होती, जहां जहां जाते आरती करते 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 लौट के आते, तो जगह जगह इनकी आरती हो रही। एक जगह पर वो उनका इतना गौरव हुआ कि उस गांव का नाम ही बड़ा गौरव, आज भी है वो गांव, उसका नाम है गौरव। वहां पर नंद महाराज का इतना गौरव किया गया, बहुत देर रोका गया उनको, और नंद महाराज को भी आगे चलने का दिल नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी रुक गए वहां पर। मतलब बोलते ना, पैर इतनी भारी हो गए कि आगे नहीं जा रहे हैं नंद गांव की, इतने दुखी थे वो, लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं उनको, मिठाइयां खिला रहे हैं, हार पहना रहे हैं, उनको तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो खाली दग रहा है कि मैं कृष्ण बलराम को छोड़कर वापस जा रहा हूं, कैसे मुंह दिखाऊंगा यशोदा को, क्या कहूंगा, क्या कारण बताऊंगा, वो जब दुखी होगी, मैं इतना दुखी हूं, वो कितना दुखी होगी, उसको कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे समझाऊंगा, क्या शब्द बताऊंगा उनको, कैसे उनको मैं सांत्वना करूंगा। ये मन में इतनी चिंता है, खुद के दुख की भी है, उसकी दुख की भी है, और बाकी लोग जो प्रभावती आएंगे, उपनंद बाबा आएंगे, अभिनंद बाबा आएंगे, उनको क्या बताऊंगा, ये सबको जवाब मुझे देना है, सब आके ऐसे हाव ही हो जाएंगे मेरे ऊपर, प्रश्न करेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं आए, किधर गए, इसलिए उनके पैर ही नहीं हिल रहे। फिर भी जाना तो पड़ा, निकल गए, फिर आप धीरे धीरे पहुंच गए। जब नंद बाबा पहुंच रहे हैं तो खबर तो पहुंचते ना कि आ रहे बाबा, वापस आ रहे हैं, मथुरा से लौट के आ रहे हैं। तो इधर वो यशोदा माता इतनी खुश हो गई, अरे कृष्ण बलराम वापस आ रहे हैं, अभी कहाँ मक्खन है, किधर क्या है, अरे सखी इधर आ जाओ, वो मक्खन कहाँ रखा सुबह का, मैंने मुश्किल बना के रखा था, वो आज आ रहा है। एकदम हलचल मच गई घर पे, सब सखियाँ भाग रही है, कोई दीपक बना रही है, कोई रंगोली डाल रही है, कुछ मिठाइयाँ बना रही है, कुछ मक्खन लेके आ रही है, सब तैयारी हो रही है उनके स्वागत की, फूल बरसाने की, सब एकदम एकदम एक्टिविटी हो गई सब लोग। और नंद बाबा उतर के आ गए तो ये पूछ रहे, अरे कन्हैया, अरे बलुआ, कहाँ हो? तो कोई जवाब नहीं आ रहा, अरे बहुत शरारती हो गए हो, जवाब नहीं दे रहे हो, क्या क्या सीख के आए हो मथुरा से, चलो अभी जल्दी आ जाओ मक्खन खाने के लिए। तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नंद बाबा ऊपर आते हैं, इधर लटके हुए जगह से, तो कहते हैं कि कृष्ण बलराम तो नहीं आए, ये जोर से हंसती है, अच्छा मजाक कर लेते हो, और कोई बात नहीं सूझी आपको, यही सूझा? नहीं यशोदा, वो दोनों नहीं आए, बस बस अभी बस, बहुत मजाक कर लिया, बताओ अभी कहाँ पर छुपा कर रखा उनको, मैं तो बहुत व्याकुल हो रही हूँ, स्तनपान कराना है उनको, उन्हें मक्खन खिलाना है, मुझे उनकी आरती उतारना है, मुझे उनका नहलाना है, खिलाना पिलाना है, लोरी गाना है, सुलाना है, बहुत थक के आए होंगे, अभी आप ये मजाक करना बंद करो। तो फिर वो कहते हैं यशोदा, वो दोनों नहीं आए, बस अभी बस, मैं भी जाके उनको देखती हूँ रथ में कहीं तुम्हारे के बैलगाड़ी में छुपे होंगे। फिर कहते हैं यशोदा, वो दोनों नहीं आए। तभी उनको समझता है गंभीरता कि अभी ये गंभीर बात है, अभी कुछ मजाक की बात नहीं है। तो वो भी गंभीर हो जाता है, वो तो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने अपने तरफ से प्रसंग समझाया कि ऐसे ऐसे हुआ, ये वध किया, फिर ऐसे हुआ, फिर उग्रसेन को और माता जी को रिहा किया, फिर अपने माता पिता को रिहा किया, फिर मुलाकात हुई, फिर मिलने गए, फिर पैर चुने गए। जब पैर चुने गए तो उन्होंने पूछा क्या आज्ञा है, तो उन्होंने बताया रह जाओ। हम क्या कहें अभी कन्हैया की, कन्हैया ने वादा कर दिया अपने माता पिता की, हम रह जाएंगे आपकी इच्छा के अनुसार, जो भी आपको संस्कार करने हैं, गुरुकुल भेजना है, जो भी हम तैयार हैं उसके लिए। तो मैं कुछ कह नहीं पाया उस समय, और मैं आया फिर, तो फिर वो बड़ी गुस्सा हो गई, क्रोध में आ गई, तो कैसे पिताजी हो तुम, उनको प्रेम नहीं कृष्ण बलराम के प्रति, कैसे आपने समझाना नहीं, समझाया नहीं वसुदेव देवकी को, आपका फर्ज था समझाना, आपका कर्तव्य था, आप कैसे भी करके समझाते उनको कि उनको यही अच्छा लगता है, यह कितना आनंद लेते हैं, वो कितना खुश रहते हैं, यहाँ का वृंदावन में नंदगांव में बरसाने में कितना खुश रहते हैं, कितनी लीला करते हैं, गई चराते हैं, वनमाला पहनते हैं, मुरली बजाते हैं, उधर क्या मुरली है, क्या मोर पंख है, कुछ नहीं उधर, आप बताते हैं उनको, ये तो शहर है पूरा मथुरा, कंस की नगरी है, पूरा ऑफिशियल एटमोसफेयर है यहाँ पर, हमारे गाँव में कितना आनंद है, गैया है, गोबर है, गौशाला है, मित्र है, सवंगड़ी है, गुल्ली डंडा है, गेंद है, क्या जमुना जी है, सब कुछ है यहाँ पर, वहां पर कौन सा खेल है, आप बताते उनको, क्या बोलेंगे वो। उन्होंने तो अपना कोशिश तो पूरा कर लिया, लेकिन वो असहाय होकर आए थे। फिर पहले तो ये सब हो गया डिस्कशन, कैसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, कैसे आपने बोला नहीं, आपको बोलना चाहिए था। फिर वो शांत बैठे हुए, फिर वो शांत बैठे हुए तो उनका और कभी कभी कैसा होना, समझे आपने कुछ गलती किया है और आपको डांटते जा रहा हूं और आप कुछ नहीं बोल रहे, तो क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे और गुस्सा आता है और मैं डांटता हूं आपको, है ना, तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे, केवल रो रहे हैं, बस रो रहे हैं और रो रहे हैं। तो वो बहुत और ज्यादा गुस्सा हो गई, बोल रही आप कैसे पिताजी हो, किस तरह के पिताजी हो आप, आपको तो बच्चों पर प्रेम ही नहीं है, आपने प्रेम करना सिखा ही नहीं है, किसको बोल रहे हैं, नंद महाराज को बोल रहे हैं, जो वात्सल्य बोलती है स्वयं, उनको ये कह रही है, ये भी उनका प्रेम ही है शुदा का, तो प्रेम के विरह की वजह से वो इतना क्रोध में, रूप गोस्वामी समझाते हैं, भक्ति साहब को सिद्धू ग्रंथ में समझाते हैं कि प्रेम में भी गुस्सा होता है, प्रेम में भी क्रोध होता है, प्रेम में भी कठोर वचन बोले जाते हैं प्रेम के कारण, जैसे आप बच्चों को लापता जाते हो तो प्रेम से मांगते हैं ना उसके कल्याण के लिए, वैसे ही प्रेम से भी कठोर वचन बोले जा सकते हैं, रूप गोस्वामी जो वर्णन करते हैं उसका, तो वैसे वो क्रोध से बोल रही है। और फिर वो बोली कि आपको तो प्रेम करने आता ही नहीं है, कभी प्रेम किया ही नहीं आपने, इसलिए ऐसे सुखी सुखी लौट के आए आप, अगर आप में प्रेम होता तो उनको लेकर ही आते आप, अड़े रहते वहीं पर दो दिन और रुकते और कैसे भी करके पकड़ के उनको लेके आते आप, लेकिन आप तो चले आए उनको लेकर, उनको लिए बिना, मतलब आपके अंदर प्रेम ही नहीं है। अरे आपको प्रेम सीखना चाहिए दशरथ महाराज से, अभी तो बात जो है ना वो एक एक कदम ऊपर जा रही है, सच्चा प्रेम तो दशरथ महाराज ने किया, जब उनको मन के खिलाफ कई कई के आदेश के अनुसार, कई कई को दिए हुए वर के अनुसार जब राम को जाना पड़ा और ये कुछ नहीं कर सके, अरे वो मर गए, जिंदा नहीं रहे वो, फिर क्या बोलती है, आप वहीं मर क्यों नहीं गए दशरथ महाराज की तरफ, दिस इज लाइक अ फाइनल ब्लो, है ना। ये सुनकर अभी इसके हृदय में अथाह सागर की तरह प्रेम है, उसको कहा जा रहा है कि आपको प्रेम ही नहीं है, तो ये कितनी दर्द वाली बात है। बाद में बोला जाता है कि जैसे दशरथ महाराज ने जान दे दिया अपना बालक के लिए, याद करते करते आक्रोश करते हुए उसको पुकारते हुए मर गए हुए, एक दिन खाना पीना त्याग कर दिया उन्होंने और अब जिंदा लौट के आए। अरे अच्छा होता अगर वही मर जाते तो मैं समझते कि तुमको इतना प्रेम था, तुम असहाय हो गए, शरीर ही त्याग दिया आपने, तो मैं कुछ ना कुछ अपने आप को सांत्वना करते कि भाई ऐसा मेरा पति था जो मेरे बालक पर इतना प्रेम करता था, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि आप जिंदा लौट कर आए हो। और वो ऐसे बेहोश से होकर गिर जाते हैं, नंद बाबा जाके उसको जल छिड़कते हैं, उसको उठाते हैं, फिर उठ के वही क्रोध से बोल रही है, क्यों मुझे उठा रहे हो, मुझे मरने दो, आप क्यों नहीं मरे, मुझे तो कम से कम मरने दो, ऐसे बोलते जा रही हो। फिर भी नंद महाराज शांत है, मतलब रो रहे हैं लेकिन अपने संतुलन को खोने बैठे। बहुत देर बाद वो उसको सहलाते हैं, सांत्वना करते हैं, बहुत सारा दुलाते हैं उसको, और कुछ देर बाद में वो कुछ जरा से शांत हो जाती है, यू नो कभी कभी हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं तो बहुत देर तक गुस्सा करते हैं, हमें थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो वैसे ही वो थोड़ी शांत हो जाती है, मतलब कुछ कहने बोलने लायक हो जाती है। नंद महाराज की जो मैच्योरिटी है ना, प्रगल्भता, उसको आप देखिए, इतना देर तक उन्होंने इतना कठोर वचन को सहन किया है। देखो अगर आप किसी पर प्रेम करते हैं, वो बोल रहा आपको प्रेम ही नहीं है, तो कितना कष्ट होगा, आप उसको डिफेंड करेंगे ना, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो ऐसे किया था मैंने, वैसे किया था, आपको आप जस्टिफाई करेंगे अपने आप को, अपना सत्य जो पक्ष है उसको आप बताने का कोशिश करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट करेंगे और बताएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा है, क्योंकि आप सत्य में हो ना, आप वास्तव में इतना प्रेम करते हो, तो आप कैसे भी करके कोशिश करोगे, लेकिन ये एक भी जस्टिफिकेशन देते नहीं है, कहानी बता दिया मैं शांत हो गए, अपनी तरफ से कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। तो यशोदा अभी कुछ कहूंगी आपसे, मैं कहूं, वो कहते हैं मरना तो बड़ा आसान था और मैं भी वहां मर जाता। नया बात क्या कर रही, मतलब न्यू सब्जेक्ट मैटर, तो चौंक गई, सुन रही क्या हुआ। वो कहते हैं जब मैं वो संवाद सुन रहा था ना, वसुदेव देवकी का और कृष्ण बलराम का, तो कृष्ण बलराम ने कहा कि ये सब कर्तव्य पूरा करके मैं ब्रज में लौट के आऊंगा, ऐसे हमने जाते समय उनसे सुना। जब वो माताजी से अपना पिताजी से बात करके फारग हो गए तो मुझे विदा करने के लिए आए, तो जब विदा करने के लिए आए तो उन्होंने कहा बाबा मैं इनका कर्तव्य पूरा करके फिर लौट के ब्रज में आऊंगा। तो यशोदा मरना तो मुझे भी मुमकिन था, लेकिन उसने कहा है ना कि वो आएगा लौट के, समझो वो आएगा लौट के, कभी कभी भी जब भी आएगा और सुनेगा कि बाबा तो चले गए तो उस पर क्या बीतेगी, इसलिए मैं जिंदा रहा, नहीं तो मुझे भी जिंदा रहने में कोई रुचि नहीं थी। यशोदा तुझे भी जीना है, तुझे भी मरने का दिल करता होगा, लेकिन तुझे और मुझे दोनों को जीना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन वो आएगा तो हमें अगर पाएगा दोनों मर गए तो उस पर क्या बीतेगी, इसलिए तब तक तुझे और मुझे दोनों को जीना है। ये नंद महाराज है, मतलब भगवान के आनंद के लिए पहाड़ जैसे कष्ट भी हो जाए तो भी भक्त तैयार है उसके लिए। जैसे गोपियां थी, वो क्या बोली कि अगर हमारे चरणों की रज लेकर सर पे लगाने से अगर कृष्ण भगवान की सरदर्द मिटने का सवाल नहीं है, थोड़ा सा भी कम हो जाए ना, तो भी हम जिंदगी अनंत जन्मों तक नरक में यातना भोगने को तैयार है। हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा कम होगा तो भी हम उतने कम होने के लिए अनंत जन्मों तक नरक में यातना भोगने के लिए तैयार है, ऐसे गोपियां बोल रही है और रानियां सुन रही है भगवान, क्योंकि भगवान की रानी को भी मौका था अपने चरण के रज देने का सरदर्द को मिटाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, अरे ये तो हमारे स्वामी है, हमारे पति देव है, उनको तो हम चरण रज लेते हैं हमारे सर पर लगाने के लिए, तो हम पत्नियां अपने चरणों की रज उनके सर पे कैसे लगा सकते हैं, तो मर्यादा व्यतिक्रम हो गया ना पूरा, इसका परिणाम कितना खराब होगा, रानियां भी पीछे हट गई थी। लेकिन जब इन्हीं रानियों ने गोपियों का रिस्पॉन्स सुना तो वो दंग रह गई, ये तो प्रेम तो बड़े समझ के खिलाफ है, समझ के परे है, तो वैसे इनका है। कितने भी पहाड़ अगर टूटेंगे दुख और दर्द के और यातना के और पीड़ा के, फिर भी भगवान को अगर उसे खुशी मिलती होगी तो वो तैयार है उसके लिए, और उसमें एक कण का भी आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा इतनी गारंटी है, केवल कष्ट मिलेगा, फिर भी वो तैयार है। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम जो होता है ना वो निरपेक्ष होता है, प्रेम में कोई भी खुद के लिए स्वार्थ नहीं होता है कि मुझे कुछ मिलेगा इस प्रेम से, प्रेम जिस पर कर रहे हैं उसको खुशी मिले, उसको आनंद मिले, वो ठीक से रहे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। ऐसे नंद बाबा का जन्मदिन है, इसलिए उनके लिए उनके चरणों में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आशीर्वाद देंगे तो हमारे अंदर भी कुछ कुछ थोड़ा सा आयोटा लवलेश लव मात्र प्रेम उतना थोड़ा तो आ सकता है। मेनली क्या आ सकती है कि वो जो निरपेक्षता जो है ना, हम लोग ना कुछ भी काम करते हैं ना कुछ अपेक्षा रख के करते हैं, है ना, इतना भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, वहां व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सब डोनेशन दे रहे हैं, क्या अरे मुझे मोक्ष मिलेगा ना एक दिन तो मोक्ष मिलेगा, मुझे मोक्ष चाहिए, मगध धाम में प्रवेश चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपना रहता है टैग पीछे। इतना भी निरपेक्ष का नाटक करेंगे फिर भी एंड में हमको भगवान के धाम में तो जाना है। पर गोपियां क्या बोलती है, मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतात भक्ति रहित होगी, मतलब क्या मोक्ष नहीं मिलेगा वो चलेगा, बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी भक्ति में पड़े रहे हम बस। रावण जी क्या बोलते हैं, अरे आप कुचल दो हमको, कभी गले लगा दो तो भी चलेगा, कभी कुचल दो तो भी चलेगा, कभी ठुकरा दो तो भी चलेगा, आप ठुकरा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी। हाँ मतलब कुछ भी करो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः, हम आपके रहेंगे आप हमारे रहेंगे, चाहे जो कुछ दुनिया में हमारे साथ कुछ भी व्यवहार हो जाए, आप करें दुनिया करे कुछ भी करे, हम तो आपके रहेंगे, आप हमारे प्राणनाथ बने ही रहेंगे। ये जो स्थिति है ना, इसमें जो निरपेक्षता है उसकी कोई तुलना नहीं है, नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं कर सकता कि हमारा इसका इसका प्रेम से तुलना हो सकती है। ये निरपेक्षता पराकाष्ठा की निरपेक्षता है, अल्टीमेट सेल्फलेसनेस है। और ये तो बहुत अच्छी कपोल कल्पित कहानी लगती है, लेकिन ये सत्य है, और अगर कपोल कल्पित होगी भी फिर भी इसका तत्व जो है बता रहे हैं ना उसके अंदर वो सत्य है ना, कम से कम इसके अंदर जो प्रिंसिपल है निरपेक्षता का वो तो सत्य है ना, इसको तो आप ले सकते हैं, अगर श्रद्धा भी ना हो कथा पर फिर भी उसका जो तत्व है जो टेक होम मैसेज है वो तो हम जरूर ले सकते, क्योंकि तो निरपेक्षता जब भगवान के साथ में होती है ना तो भगवान अपने आप को उसके लिए अर्पण कर दे पूरा, उनके गुलाम बन जाते हैं भगवान, उसके दास बन जाते हैं भगवान। इसलिए ऐसे व्यक्ति के आंगन में बालक बन के ढोल रहे वो, सबके आंगन बालक बन ढोलने रहे हो, एक राम बन के ढोले कौशल्या दशरथ के आंगन में है ना, बाकी किसी के नहीं, नरसिंह भगवान तो आए और चले गए, कोई माता पिता नहीं था उनका, कश्यप मुनि और अदिति के घर पे आए तो ज्यादा कुछ बाल लीला नहीं किया, सीधे ब्राह्मण बन के चले गए लीला करने के लिए, वहां से ही वापस चले गए, कोई लंबा समय नहीं बिताया उन्होंने। एक राम जन्म का लीला, आप बालक बन के डोले हैं उनके, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके बाद में तो कोई दूसरा काम नहीं किया जो ब्रज में भगवान ने कृष्ण बन कर दिया। इसलिए नंद बाबा का भाग्य जो सर्वोत्तम भाग्य दशरथ से भी बढ़कर है, दशरथ भगवान दशरथ महाराज तो मर गए ना, राम को कितना दुख हुआ उससे, कि अरे मेरे वजह से मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं लौट के जाऊंगा तो उनका दर्शन नहीं करूंगा, अरे जंगल में मेरी माताएं सफेद पहनकर क्यों आई हुई है, पूछते क्या हुआ तो बोलते पिताजी गुजर गए, लेकिन नंद बाबा नहीं गुजरे, जीवित रहे, अपने कितनी इच्छा थी प्राण पखेरु को उड़ने की बाहर शरीर के, उस पखेरु को बनाकर रखा शरीर में, नहीं रखना है हमको, रहना है जिंदा रहना है, क्योंकि उसे खुशी मिलेगी जब हम जिंदा रहेंगे, जब लौट के आएगा तो हमें देखेगा तो उसको आनंद मिलेगा कि बाबा मैया दोनों हमारे लिए वेट कर रहे हैं, इसको भक्ति के। और वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम इस धाम में आए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ आज हमारा भाग्य है कि आज हमारी यात्रा के पहले दिन ही नंद बाबा का जन्मदिन है, कितनी खुशी की बात है, हम बार बार कोटि कोटि दंडवत करते हैं उनको, प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि हमें थोड़ा सा तो आपका जो प्रेम है वो प्राप्त हो जाए ना तो हमारा जीवन धन्य है, उनको नंद बाबा होने की इच्छा तो नहीं है लेकिन नंद बाबा के चरणों का अनुगमन करने की जरूर इच्छा है, उनका पदचिन्हों पर चलने की जरूर इच्छा है, और यही जीवन का सार है। अगर आपका मन और आपकी चेतना नंद बाबा जैसे विचारों में मग्न है, आपको दुनिया का कोई दुख नहीं छुएगा, कोई पति पत्नी का क्लेश, कोई धन संपत्ति का नहीं होने का क्लेश, कोई किसी का मरने का क्लेश, किसी का भूकंप का क्लेश, किसी तूफान का क्लेश होता है ना दुनिया में बहुत सारा, वो कोई क्लेश आपको स्पर्श नहीं करेगा, होते हुए भी स्पर्श नहीं करेगा, सब वो तूफान क्लेश सब होता रहेगा आपको लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि इतनी उच्च आत्मा की स्थिति है, दुनिया की कोई भी ऊपर नीचे होने वाला जो दाव है ना उसको आपको स्पर्श नहीं करेगा, इसलिए हम उनको पूछते हैं, क्योंकि ये त्रिगुणातीत व्यक्तिमत्व है, दुनिया के सारे हिसाब किताब से परे है ये व्यक्ति, इनको दुनिया के कोई हिसाब किताब से लेना नहीं, जो भी लेना देना है केवल भगवान से बस, और वो भी उनके आनंद से लेना देना है, खुद से नहीं कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आज के दिन हम सब लोग हाथ जोड़कर नंद बाबा को हृदय से प्रणाम करते हैं, सुधा भाई को हृदय से प्रणाम करते हैं, याचना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें और आपके कृपा से ही हम भगवान की निरपेक्ष भजन भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।